So, we've been looking at mindfulness of the body.
तो हम शरीर की जागृति के बारे में देख रहे हैं.
And I've been stressing just how important this sort of mindfulness is.
और मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये किस तरह की जागृति है.
The Buddha says that without mindfulness of the body, you will not be able to control your mind.
बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते.
He said it's a bit as if you've got five wild animals.
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यानी पांच जो जंगली जानवर हैं.
And well, these five animals are of course the five senses.
ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, यह वो पांच जानवर हैं.
And those five wild animals, as soon as they see something, they rush off to eat it or whatever.
जैसे ही ये पांच जो हमारी इंद्रियां हैं, जो जब भी कुछ देखती है तो तुरंत वो भागती है, जल्दबाजी करती है भागने के लिए, खाने के लिए और कुछ करती है.
So, how to control?
तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाए?
Well, you dig, you drive a big post into the ground.
तो एक बहुत ही बड़ा सा खंबा है, हमें जमीन के अंदर गाड़ देना है.
And then you tie a rope to each of those wild animals and tie them to the pole.
और वो ये जो बड़ा सा गड्ढा है, इनको भी जोर से बांध देना है इस बड़े से खंभे को.
So the pole is the body.
तो यह जो खंभा है, यह हमारा शरीर है.
And the rope is mindfulness.
और यह जो रस्सी है, यह हमारी जागृति है.
So you control yourself by mindfulness of the body.
हमारे शरीर की जागृति के साथ हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं.
And the Buddha says, without that, you cannot stop yourself from acting unskillfully.
इसके बिना बुद्ध कहते हैं कि इसके बिना हम अपनी जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, इसे रोक नहीं सकते.
And it occurred to me that this might be a good answer to a question I was asked 2 days ago.
दो दिन पहले मुझे जो सवाल पूछा गया था, इसके बारे में कुछ कहूंगा.
Somebody said, you know, he'd been going on retreats for 15 years, but when he leaves the retreat, he just behaves like an ordinary person.
And कल किसी ने सवाल पूछा था कि 15 सालों से मैं ये शिविर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तय करता हूँ, जैसे घर जाता हूँ सब बातें चली जाती हैं.
And this is the answer.
और ये उसका जवाब है.
All the other things I said were true too.
दूसरी भी बातें हैं, वो भी सही है.
But the one thing that we can really try to do is maintain mindfulness of the body.
एक बात यह है, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो शरीर की जागृति.
And then you notice when you're starting to do something that you shouldn't do.
जब यानी कुछ होने लगता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये नहीं करना है.
So we need to make a much, much greater effort to be mindful of our bodies.
तो हमने बहुत बहुत ऐसे प्रयास करने हैं अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने के.
I've come to think that in TBMSG we don't stress this enough.
यानी हम अपने TBMSG में इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं.
It's really the foundation, the base for the whole spiritual life.
ये यानी पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन का यह आधार है, यह नींव है.
If you can maintain awareness of your body, you can stop yourself from doing unskillful things.
जब हमारे शरीर के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, तो हमारी जो अकुशल मनोअवस्थाएं हैं, उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं.
If your hand starts going towards your mobile phone, you're aware that it's happening.
जब हमारा हाथ अपने मोबाइल फोन की ओर जाने लगता है, तब हमें पता चलता है कि कुछ तो भी हो रहा है.
Because usually what happens to the mobile phone is there in your ear before you've even noticed it.
यानी हमें कुछ पता होने के पूर्व ही ये मोबाइल फोन हमारे कान की तरफ होता है.
But yes, if you maintain mindfulness of the body, you can stop yourself from doing unskillful things.
जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हमारी जो मनोअवस्था है, अकुशल मनोअवस्था है, वो हमें पता चलती है.
So really, while we're on the retreat, we need to be giving as much effort to developing mindfulness of the body as we can.
यानी हम जब शिविर में होते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने.
And I do think we've got quite a bit more work to do.
और मैं इसके लिए और भी कुछ बहुत सारे कार्य करने जैसे.
It means, for instance, when you come into the shrine room, moving your cushions, putting them down very, very carefully, very slowly, very softly.
जब भी हम मेरे पूजा स्थान में आते हैं और अपने अपना जो आसन लगाते हैं तो बहुत ही जागृत के साथ बहुत ही आराम से ये चीजें करनी है.
So that you're aware of each movement as you make it.
हम जो कुछ भी हलचल कर रहे हैं उसके प्रति हम सचेत होते हैं.
And then you won't disturb anybody else.
तो इससे हम किसी दूसरे को विचलित नहीं करते हैं.
It means being very aware while you're meditating.
जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तभी भी बात है.
You know, if you make a cough, if you clear your throat, it disturbs everyone.
जब हम खांसी आती है तो भी उसे भी बहुत सारे बहुत लोगों को विचलित होते हैं.
And it usually happens when you lose your mindfulness.
जब हमारा मन थोड़ा सा ढीला होता है तभी अक्सर ये बातें होती हैं.
So yes, if you're mindful in the shrine room, but it'll make a very very different atmosphere.
जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हैं तो पूजा स्थान का जो माहौल होता है ये कुछ अलग ही होता है.
When you're making offerings, you can be very mindful.
जब हम अर्पण के लिए आते हैं और जागरूक हैं,
we're not doing badly, it's doing reasonably well.
हम लोग इधर कुछ बुरा नहीं कर रहे, वो पर्याप्त मात्रा में अच्छा चल रहा है.
But we could still be a lot better.
लेकिन फिर भी ये भी और भी अच्छा होने के लिए बहुत सारी जगह है.
So for instance, making sure that you move together.
यानी ये हमने खातिर कर लेनी है कि हम सब एक साथ शुरू हो गए वहाँ से.
Most people are doing that.
बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं.
But sometimes it's like I've heard a buffalo coming.
तो कभी यानी गैया नहीं क्या चलती है ऐसी सॉरी वैसे उस तरह होता है.
One person out there, one person back there, one person over there.
यानी एक यहाँ एक वहाँ और कई जगह.
So this is an exercise in mindfulness of the body.
तो यह है शरीर की जागृति का यह एक सराव है.
Not like an army, not like a military formation.
यानी ये कोई मिलिट्री की तरह फौज की तरह नहीं है.
But a very natural, very spontaneous awareness of each other as you move forward.
और ये बहुत ही नैसर्गिक और अंदरूनी ऐसी बात है जो हम उसका इसका आचरण कर रहे हैं.
And then being very mindful of the people who are at the shrine.
हम लोग हमारे पूजा स्थान में जो दूसरे लोग हैं उसके प्रति भी सजग होते हैं.
And not just sort of pushing forward and pushing in front of people.
हमारे सामने जो लोग हैं उनको एक तरह से धक्का नहीं दे रहे, ढकेल नहीं रहे.
But very mindfully waiting until the right moment to go forward.
हम तब तक इंतजार करते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं जब तक हम आगे न जा सकते.
Then when you're bowing, making sure that everybody can get in a line.
जब हम प्रणाम करने के लिए आते हैं तब इस तरह की खातरी करनी है कि अभी सभी लोग तैयार हैं इसके लिए.
Sometimes some people go down in such a way that two or three people have to go back.
कभी कुछ लोग यहाँ बैठ जाते हैं और कभी कुछ लोगों को अभी पीछे भी आ रहे हैं अपन करके.
These are all small things, but they help us to develop more mindfulness of our body and mindfulness of the bodies of others.
ये छोटी सी बात है लेकिन यही बात हमें अपने स्वयं के प्रति और औरों के प्रति की जागृति के लिए सहायता करती है.
And they will make for a very much more beautiful atmosphere.
और इससे बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण तैयार होता है.
When you're washing up in the queue at the dining room, being very careful of other people, being very mindful in what you do.
जब हम डाइनिंग हॉल के पीछे जब अपनी अपनी जो प्लेटें होती हैं उसको धोने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहाँ भी हम जागृति का आचरण कर सकते हैं.
When you're queuing, just being very aware of your own body, being aware of the plate that you're holding, being aware of the people before and behind you.
जब हम इस तरह अपनी थाली लेकर खड़े हैं तो वहाँ भी जागृत रहना कि मेरे पीछे मेरे आगे जो लोग हैं उनको.
When you're getting your food, being very very mindful as the food is put in.
हम जब हमारी थाली में जब हमारे अन्न पदार्थ आते हैं तो उसके प्रति भी जागरूक रहना कि हाँ ये इस तरह से परोसे जा रहे हैं.
Moving very carefully to your seat.
तो हम बड़ी जागरूकता के साथ वहाँ से निकलेंगे और अपनी जगह पर जाएंगे.
Now all of this is not completely natural to us. It's not natural to us. We don't do this easily.
ये इतना आसान नहीं, नैसर्गिक नहीं होता है.
We're trying to do something a bit different.
हम कुछ अलग करना चाहते हैं.
So to begin with, we may be a bit stiff or a bit awkward.
तो कभी-कभी हम इस तरह से बहुत अकड़े हुए इस तरह से होते हैं.
But in order to develop greater mindfulness of the body, we've got to make more effort.
तो अगर हम अपने शरीर के प्रति हमें जागरूक होना है, तो हमें और भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है.
And yes, after some time, it becomes more smooth, more natural.
यानी ये इस तरह का सराव होने से कुछ देर कुछ समय बाद ये बहुत ही नैसर्गिक और आसानी से होने लगेगा.
I was thinking about it in this way.
हमें गांधी जी के बारे में इसके बारे में कह सकते हैं
एक्सट्रीमली माइंडफुल
वह बहुत बहुत ज्यादा जागरूक है
when you're with him you realize that he's completely aware of all his movements
जब हम उनके साथ रहते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनकी हर एक जो हलचल है वो कितनी यानी बहुत जागरूकता से हो रही है
and you know he makes his gestures very deliberately
जो कुछ भी करते हैं बहुत ही यानी सजगता से करते हैं
and if he, you know for instance if he gives you something he'll give it to you very very carefully
जब आपको कुछ दे रहे हैं तो बहुत ही जागरूकता के साथ देते हैं
I was just thinking of the when I last saw him
यानी पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था उसके बारे में
I knocked on the door went in
मैंने दरवाजे को टकटकाया और अंदर आया
Bante was sitting in his chair and he looked up at me
बंदे वहां कुर्सी पर बैठे हुए थे और मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे
and he just held out his hand like that
और उन्होंने इस तरह से अपना हाथ ऊपर उठाया
so I went up and shook his hand
तो मैंने उनका हस्तांतरण किया
but the way he held up his hand it was as if he was aware of every moment of what he was doing
तो जैसे उन्होंने अपना हाथ उठाया तो मानो यानी वो अपनी हर हलचल के प्रति बहुत ही सजग है
and I felt my hand was very clumsy as it came towards him
और मेरा हाथ इस तरह से
so but you know he's become like that because he's made an effort
वो ऐसे हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं
So when you're walking around the room, make an effort to make all your movements very smooth, very graceful, very gentle.
जब हम अपने अपनी जो रूम होती है उसके अंदर जब कुछ हलचलें करते हैं तो कोशिश करते रहना है कि वो बहुत ही यानी सहजता से हो रही है नैसर्गिकता से हो रही है
This is of course the reason why the early bhikshus developed the vinaya
तो इसीलिए शायद यानी शुरुआत के दिनों में यानी विनय की निर्मित हुई है
They developed it as a discipline to promote mindfulness of the body
तो उन्होंने यानी अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने के लिए इस तरह के अनुशासन को बनाया था
you know because you had to wear your robe in a particular way you were more conscious of what you were doing
तो एक विशिष्ट तरीके से वो अपना चिवर पहना करते थे तो पता हो यानी इसके प्रति यानी कैसे पहन रहे इसके प्रति भी जागरूक रहते
and maybe they go too far maybe it goes too far
तो यानी हम और आगे चलते हैं
But still, I think we could do with much more discipline amongst us to promote mindfulness.
तो यानी इस जागृति को बनाए रखने के लिए हमने भी कुछ अनुशासन का पालन करना है.
Yes, I think we need to do quite a lot of work to develop that sort of beautiful, smooth, graceful movement.
तो यानी हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे इस तरह की जो जागृति है जो सुंदरता लाएगी इसके लिए
you often read in the scriptures that somebody sees the Buddha or one of his disciples
यानी हम अक्सर सूत्रों में देखते हैं कि किसी ने बुद्ध को देखा है उनके किसी शिष्य के साथ
and the analogy that's often used is that they seem like a well-trained elephant
तो वो यानी ऐसा उसका बताया जाता है कि बहुत ही प्रशिक्षित ऐसे हाथी की तरह
you know, an elephant is a huge animal
हमें पता है कि हाथी एक बहुत ही बड़ा ऐसा प्राणी है
and it's so powerful
बहुत शक्तिशाली है
but when it's trained all that energy is tamed
जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तो उनकी सारी शक्ति जो है वो एक तरह से यानी प्रशिक्षित यानी पूरी सारी शक्ति एक तरह से काम करती है वो सही ढंग से काम करती है
so each step that the elephant makes is very very strong very firm very clear
jab wo apna kadam uthate hain to bahut hi mazbooti ke sath uthate hain bahut hi sthirta ke sath uthate hain
so when people saw the buddha and his disciples just the sight of them was enough to attract them
to jab bhi log buddha ko is tarah unke shishyon ko sath dekhte the to turant unki taraf aakarshit ho jate the
I remember the very first time I saw Bante
मुझे याद है मैं बिल्कुल पहली बार जब भंते जी को देखा था
I didn't know anything about him.
मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था
I was going for a walk on a park in a park in London.
मैंने लंदन के एक बगीचे में घूमने जा रहा था
And when I came out of that park, I was beginning to walk down the road.
तो मैं उस बगीचे से निकलकर यानी रोड से जा रहा था
And I saw a figure coming towards me.
तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो मेरे सामने से आ रही है
First of all, my eye was caught by that figure because he was strangely dressed.
तो उन्होंने बहुत यानी विचित्र ऐसा ड्रेस पहना हुआ था इसलिए मेरा पहली नजर उनकी तरफ चली गई.
He had on a long cloak.
लंबा सा यानी झगा बोल रहा
हूँ.
ऐसा यानी झोल. झोगा झोगा पहना था झोगा.
And underneath I could see a flash of orange from his robe.
और उन उस झोगे के अंदर जो है ना वो नारंगी रंग का कपड़ा था.
But once my eye had been caught by him, there's something else that I noticed.
And जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो कुछ और भी मेरे समझ में आ गया.
He was walking along with what I would now call very great mindfulness.
तो वो बहुत ही यानी जागरूकता के साथ चल रहे थे.
It seemed as if he was in complete possession of himself.
And वो अपने स्वयं के पूर्ण स्वयं के साथ थे.
And he walked along. He was walking along quite quickly, but it seemed without any hurry, without any effort.
तो बहुत ही यानी जल्द चल रहे थे लेकिन ऐसी कोई घाई उनके चलने में नजर नहीं आ रही थी. बहुत ही चल रहे थे.
And his eyes were just looking at the ground ahead of him.
यानी उनके आप यानी सर के सामने की जो जमीन है सिर्फ वहां पर देख रहे थे वे.
I was extremely impressed by what I saw.
जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया.
And I didn't forget it even though it was another year before I actually made contact with Bhante.
अरे उसके एक साल बाद में उनसे मिला लेकिन तभी भी मुझे वो बात याद थी.
So it's this quality of mindfulness that is one of the most attractive features of the Sangha.
अरे ये शरीर के प्रति की जागृति या निर्माण करना ये लोगों को संघ की तरफ आकर्षित करने वाली बात है.
TVMSG used to be well known for friendliness.
हमारी यानी त्रिलोक के वो महासंघ सहायगण जो है वो मित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध है लोकप्रिय है.
I think we're not so good at that now.
अभी यानी इन दिनों में हम उतने अच्छे नहीं है अभी इसमें.
But we can be friendly. Yeah.
लेकिन हम मित्रता से रहते हैं.
But we're not known for mindfulness.
लेकिन हम जागृति के लिए फेमस है लोकप्रिय नहीं है.
So I think we should be known for friendliness and mindfulness.
तो मुझे लगता है कि हमें जागृति के लिए और मित्रता के लिए भी लोकप्रिय होना चाहिए.
The more mindful you are, the easier it is to maintain your friendliness.
अगर हम स्वयं के प्रति जागरूक हैं तो हम अच्छी मित्रता को प्रस्थापित कर सकते हैं.
The more friendly you are, the more easy it is to maintain your mindfulness.
जब हम ज्यादा मित्रता पूर्ण होते हैं तो हम अपने स्वयं के प्रति जागरूक भी हो सकते हैं.
So let's make more effort on this retreat to do everything more carefully, more slowly, more deliberately.
चलिए इस शिविर में प्रयास करते हैं कि बहुत यानी क्या होती है जागृति के साथ हम प्रयास करते हैं कि स्थिरता के लिए सहजता के लिए.
And just be, try to be as aware as you can of every movement you make.
जहाँ कहीं भी हम हैं और जो कुछ भी हलचल कर रहे हैं.
And of every action that you take.
जो कुछ भी कृति कर रहे हैं.
And in that way, we will create a basis for our spiritual lives.
तो इससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन की एक आधारशिला बनाएंगे.
And yes, it may be a little stiff, a little awkward.
यानी ये थोड़ा सा यानी कठिन लगेगा थोड़ा सा यानी
कठिन स्टिफ because you're being deliberate it's not quite flowing.
Yeah. यानी हम सोच समझ जानबूझकर ये कर रहे हैं इसलिए इतना सहज नहीं लगेगा.
So don't worry about that. That will come.
यानी इसके बारे में चिंता नहीं करनी है. आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा.
But just try to be more deliberate in everything you do.
तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं जानबूझकर सोच समझकर करना है.
And especially try to be aware of the movements of your body.
तो इन्हें कोशिश करना है कि हमारे शरीर की जो भी कुछ हलचल हो रही है उसके प्रति जागरूक हो.
And that will greatly help everything else.
तो सभी यानी इससे बहुत बड़ी हमें सहायता होगी जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए.
When you come to meditate, you'll almost be meditating already.
तो जब हम ध्यान के लिए यहाँ आएंगे तो एक तरह से हम ध्यान में ही रहेंगे.
So that brings us on to the third step in the mindfulness of the body.
तो इससे हमें ये जो तीसरा स्तर है जागृति का यहाँ तक आते हैं.
So first of all, we got mindfulness, just being aware of the posture.
तो पहली बात है हम अपने आसन के प्रति की जागृति देखिए.
Secondly, we've got intelligent awareness of all our actions.
हमारी जो कुछ भी हम कृति कर रहे हैं उसके प्रति का विवेक देखा है हमने.
Now we're ready to meditate.
अभी हम ध्यान के लिए तैयार हैं.
So we go to a suitable place.
तो हम अच्छी जगह में चले गए हैं.
I talked about that the other day.
इसके बारे में कल मैंने कुछ कहा था.
We find an appropriate posture, a posture that we can maintain.
हमने एक अच्छा सा आसन धारण किया है ध्यान के लिए.
A posture that keeps our back straight.
अने जिससे हमारा शरीर सीधा हो.
And we establish mindfulness of the body.
हमने अपने शरीर के अंदर एक स्थिरता लाई है.
And then we begin to be mindful of the breath.
तो उसके बाद हम अपने सांस के प्रति सजग हुए.
So the Buddha says that we're mindful of the breath in four different ways.
तो बुद्ध ने कहा है कि अरे सांसों के प्रति की जो जागृति है वो अलग-अलग चार तरीके से होती है.
First of all, you're aware that you're breathing in and out long breaths.
तो पहली बात ये है कि हम ये जानते हैं कि अंदर और बाहर जो सांस जा रही है लंबी सांस हम अंदर बाहर ले रहे हैं.
Secondly, you're aware that you're breathing in and out short breaths.
तो हम ये जानते हैं कि अंदर और बाहर जो सांस आ रही है वो धीमी ले रहे छोटी ले रहे.
So what's said here is that as you become more concentrated, you need less air.
तो जब हम जितना ज्यादा जागृत हो जाते हैं तो कम मात्रा में हवा की जरूरत होती है.
So your breathing becomes lighter.
तो हम सांस एकदम बहुत ही हल्की सांस लेते हैं.
So the breath becomes shorter.
तो सांस जो है वो छोटी हो जाती है.
So that's what's said, and certainly my experience.
और ये कहा गया है और ये मेरा अपना अनुभव है.
When you're very very concentrated, you're hardly breathing at all.
तो जब हम बहुत ही ज्यादा जागृत हो जाते हैं एकाग्र हो जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में हमारी सांस चलती है.
So you're aware of the quality of your breath.
तो हम जागृत होते हैं कि हमारी सांस किस तरह से आ जा रही है.
Sometimes it says that the long breath corresponds to counting after the other breath.
यानी अक्सर ऐसे कहा जाता है कि जो लंबी सांस हम अंदर ले रहे हैं गिनते हैं और छोड़ने के बाद दूसरी लेते समय गिनते हैं.
The short breath corresponds to counting before the in breath.
तो जो छोटी सांस लेते हैं इसके लिए उसे पहले गिना जाता है.
Because you should have become a bit more concentrated.
तो यानी हम अभी थोड़े से और ज्यादा सजग हो गए.
So you're not just aware of the breath, you're aware of the quality of the breath.
तो हम केवल सांस की जो आना जाना चल रहा है इसके प्रति जागरूक नहीं होते तो उसकी जो गुणवत्ता है उसके प्रति जागरूक.
I think this is quite important.
ये बहुत ही महत्व का है.
We can sometimes teach and practice the mindfulness of breathing as if all you have to do is be aware of the breath.
तो यानी अक्सर हम ध्यान को जब पढ़ाते हैं तो सांसों के प्रति जागरूकता के बारे में ज्यादा कहते हैं.
But that isn't easy to sustain. It's not interesting.
वो इतना रोचक नहीं है या फिर चलने वाली बात नहीं है.
So you have to sort of try to be aware of the quality of the breath.
तो यह जो सांस की जो गुणवत्ता है उसके प्रति जागरूक होना.
What is the breath like?
ये जो सांस है वो कैसी है?
This is a question in words. It's something you notice immediately.
ये जो सवाल हमारे मन में आता है तो इसे तुरंत हम समझ सकते हैं.
So you notice that the breath is becoming finer, becoming softer, becoming shorter.
हम देखते हैं कि ये जो सांस है बहुत ही छोटी है मुलायम जैसी और शुद्ध है विशुद्ध है.
You know what you're doing.
हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं.
It's not just that you experience the breath. You know what you're doing.
हम केवल सांस का अनुभव ही नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या कर रहे हैं.
So the third stage, it says you train yourself experiencing the whole body as you breathe in and out.
तो तीसरी बात कही है कि हम अनुभव करते हैं कि पूरे शरीर से अनुभव करते हैं कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है.
It's as if in the first two stages your mind is sort of going in and out with the breath.
तो पहले दो जो स्तर है पारिया है वहां हम देखते हैं कि यानी सांस के साथ हम अंदर और बाहर आना जाना करते हैं.
But in the third stage you're aware of the body with the breath coming in and out of it.
और तीसरी स्तर में तीसरी पारी में देखेंगे कि हमारा पूरा शरीर ये अनुभव करता है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है.
And you're training yourself to be mindful with the breath coming and going.
तो हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि इस तरह शरीर में सांस आ रही है और जा रही है.
And this corresponds to the third stage of the mindfulness of breathing.
और यह आनापानसति की तीसरी पायरी है.
And then the fourth aspect that's talked of here, you train yourself calming the body as you breathe.
And चौथी बात हम देखते हैं कि सांसों के साथ हम यानी शांत हो रहे हैं.
Shant is calming shant.
So because
calming has the peace is just a state of peace. Calming is a state of gradual coming to peace, as it were. Okay, never mind. We'll find out. Yeah. What's the word here? Is it shant?
Shant.
There we are. Yes, one language has the ability to make distinctions that another doesn't. So yes, you train yourself calming the body down.
So यानी हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि अपने शरीर को शांत करें.
So as you're focusing on the sensation of touch in your nostril, you're also consciously calming your body down.
जब हम देखते हैं कि इन जो सांस की ये जो संवेदना होती है हमारे नाक के सिरे पर और वो अंदर जाते हैं तो हमारा जो शरीर है उसी तरह से शांत होते जाता है.
You get this in the Pali Canada, you play on the subject.
यानी पाली वांग्मय में जो काया पसादी कहा गया.
In Sanskrit, it's prashabdi.
और संस्कृत में इसे प्रशब्दी कहा गया.
So it's a wonderful feeling that everything's still, everything's calm, no disturbances at all.
तो यानी ये बहुत ही ऐसी सुंदर ऐसी अवस्था है कि सभी कुछ स्थिर है, सभी कुछ शांत है, कुछ भी अटकाव नहीं है, अड़चन नहीं है.
You know, when your mind is disturbed, your body is twitching.
जब हमारा मन विचलित होता है तो हमारा शरीर भी इस तरह से विचित्र हरकतें करता है.
But when your mind becomes still, your body becomes still.
जब हमारा मन स्थिर होता है तो हमारा शरीर भी स्थिर होता है.
And yes, you're deliberately training yourself in this way. This is what the text says.
तो यानी सूत्रों ने यह कहा है कि यह सराव जो हमें वो सोच समझ कर जानबूझकर करना है.
So the Buddha then gives a simile.
Buddha ने एक रूपक बताया है.
I don't know whether it's turning. You have that turning wood.
Sutar.
You know, when you make a chair leg, you put it on a wheel that turns it round and round, and then you that's the Hindi word. Right.
Yeah. No, he's English word actually, but and a turner जो होता है ना पता है ना आपने को.
Yeah, turner. Some लोग क्या बोलो turner. So you know when you're making something like a chair.
And जैसा कि यानी हमें जो कुर्सी है उसका पैर बनाना है.
Nothing like that here.
लकड़ी की कुर्सी का पैर बनाते हैं.
You make it round but with a shape in the round in the leg.
यानी हमें यानी वो एक गोलाई में उसे काटना है लेकिन इसे यानी लकड़ी को.
And I've seen this done in India today by hand.
और ये यानी भारत में मैंने इसे देखा है कि वो बाय यानी हाथ से करते हैं.
You put it on two spindles, two spikes.
तो दो जगह से उसको यानी इस तरह से आड़ी से बंधा हुआ होता है.
And then you have a bow.
और फिर उसे यानी वो घुमाया जाता है.
And you just push the bow up and down like that so that the leg whirls.
तो वो जो रस्सी होती है उसको ऐसा करते से वो घूमने लगता है.
And then with a chisel you just shave wood out of it. Yeah.
तो ये जो सुधर पटाशी होती है ना उससे वो उसे आकार देते हैं.
So it's a very skilled job.
तो ये बहुत ही यानी कुशल काम है.
I did it when I was learning carpentry.
जब मैं यानी सुधार काम को सीख रहा था यानी बढ़ई के काम को सीख रहा था तभी मैंने इसे यानी देखा.
And you know, if you don't know what you're doing, you make the table leg look like I don't know what, like an old tree, old root. Yeah.
अगर हम उसके प्रति अगर जागरूक नहीं रहे तो यानी जो मूलियां ने कैसी भी आकार में होती है उस तरह का हो जाए.
So when you're doing it, you have to be very, very concentrated.
जब हम वो काम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एकाग्रता एकाग्र रहते हैं
because that's that blade every cut it makes shakes
तो वो जो यानी जो जिस ब्लेड से हम उसे काट रहे हैं वो हर जो टुकड़ा जो है उसे आकार तैयार होता है
so you're very very concentrated on the tip of the chisel
तो यह जो पटाशी होती है ना चिजल जो है उसका जो उसकी जो धार है बहुत ही जागरूकता के साथ उसे लगातार रखनी पड़ती है
and a skilled turner knows exactly what he's doing
और जो कुशल कारीगर है वही जानता है कि यह एकदम बराबर कैसे करना है
he knows he's making a long cut
उसे पता है कि इसे लंबा कट करना है इसे
he knows he's making a short cut
उसे यह पता होता है कि मैं शॉर्ट कट कर रहा हूं
he knows he's making a deep cut
उसे यह पता है होता है कि अभी मैं इसे गहराई में काट रहा हूं
he knows he's making a shallow cut
और उसे यह पता होता है कि एकदम यानी ऊंची तौर पर इसे काट रहा हूं
so when you're doing the mindfulness of breathing you need to be like that
जब हम आराम से इतना सराव करते हैं तो हमें उस तरह होना चाहिए
it's a beautiful image isn't it
ये बहुत ही यानी सुंदर है
the Buddha uses many many images from craftsmen Because a craftsman has that quality of attention and awareness.
ये जो बढ़ई है सुथार कारागिर जो है ये जागृति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ये किस तरह होना चाहिए
He knows what he's doing exactly.
उसे पता होता है कि वो सही में क्या कर रहा है
So when you're doing the mindfulness of breathing, you know exactly what you're doing.
तो जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो हमें पता होता है कि क्या कर रहे हैं
You're aware of what you're doing and you sort of know its significance.
यानी हमें पता होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं और उसका लक्षण क्या है
So that's the mindfulness of breathing.
तो यह
It's a mindfulness of the body that takes you very very fine.
And हम अपने शरीर के प्रति जब जागरूक हो जाते हैं तो और भी यानी सूक्ष्म होते हैं.
It makes your awareness very very subtle.
हमारी जो जागरूकता होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है.
It gives you a great deal of shamatha.
और ये हमें यानी क्षमता की तरफ ले जाती है
and it of course gives you access to jhana
तो यानी हम ध्यान की गहराई में जाने के लिए एक साधन बनती है
and it itself it can be productive of vipassana
और इसी से हम यानी विपश्यना की यानी निर्मिति होती है
did the refrain you've got the way in which you apply vipassana to the mindfulness of breathing
तो यानी आनापानसति के ध्यान से हम विपश्यना की ओर कैसे जा सकते हैं यही यहाँ पर बताया गया है
that is by being aware of its rising and falling its coming and going
तो यह यानी जो भी उत्पन्न हो रहा है और उसका विलय हो रहा है इसके बारे में कहा है
so the Buddha speaks of mindfulness of breathing as noble
तो बुद्ध ने यानी जो आनापानसति है इसको यानी आर्य कहा है
and he talks of it as divine as brahma specifically yeah
और बुद्ध यहां कहते हैं कि यह एक तरह से यानी दैवी है ब्रह्म है
Because it takes you into these very, very refined and subtle mental states.
तो यह हमें बहुत यानी शुद्ध और सूक्ष्म ऐसी मानसिक अवस्था प्रदान करती है.
And it gives your whole mindfulness much more focus.
तो हमारी जो जागृति है बहुत ही ज़्यादा यानी एक विशिष्ट मुद्दे पर ऐसी लाती है.
It's much easier through the mindfulness of breathing to build up your mindfulness.
यानी जागृति हमें और जागृति की ओर ले जाती है
but then you have to apply outside the meditation
और ये बात हम अपने ध्यान के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं
and you do that by the first two stages that we talked about yesterday
और ये दो जो स्तर है इसके बारे में कल हमने बात की है
so the last three of the exercises under the heading of the body are to do with insight directly
और कायानुसति के बारे में जो और तीन बातें बताई गई यहाँ पर जो सीधा हमें यानी इस तरह से विपश्यना को निर्देश करती है
हाँ
20 minutes
according to that
yeah 20 25
so yes we've got three other practices to go through
और तीन जो शराब है जिसको हम देखेंगे
and all of these take us much further, much deeper.
और ये तीन हमें और आगे ले जाती है और गहराई में ले जाती है
they assume that we're mindful of our body and our movement.
तो ये यहाँ ऐसी कल्पना की गई है कि अगर हम अपने शरीर के प्रति और अपने सांसों के प्रति जागरूक हो
they assume that we've got a degree of concentration through anapanasati.
यानी आनापान सति से हम इस तरह की जागृति तो हमने बढ़ाया है यह माना गया है
then we begin to reflect.
और फिर हम चिंतन करते हैं
so we've got three of these reflections here.
तो यहाँ तीन अलग अलग चिंतन बताए गए हैं
so first of all we look at what the body is made up of.
तो पहली बात हम देखेंगे कि हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है
the Buddha said it's like a man who's got a sack full of many different kinds of seed.
तो यानी बुद्ध ने ऐसे कहा कि यानी कोई यानी इस तरह से एक झोला है भरा पर बहुत सारे उसके अंदर बीज हैं.
And he's going through those seeds. Perhaps he's sorting them out.
तो वो अलग-अलग जो बीज हैं अलग-अलग कर रहा है.
So he says this is wheat. This is rice.
तो ये कहता है कि ये गेहूं है और ये चावल है.
This is mung bean.
यह मूंग दाल है.
This is kidney bean.
यह उड़द है.
Wow. This is. And so on.
और इस तरह से.
Or this is sunflower seed.
और यह सूर्यफूल के बीज
है. Wow. So it just sorts them out.
तो वो सभी चीजों को यानी अलग-अलग करता है.
So he sees that inside this sack are all these different seeds.
तो ये कि झोले में अलग-अलग बीज हैं वहाँ पर.
So the same way you look inside the body.
तो इसी तरह हमें अपने अंदर अपने शरीर के अंदर इसे देखना है.
And you go from as it were the outside deep inside.
तो हम बाहर से देखते हैं और गहराई से अंदर भी देखना है.
This hair.
यह बाल है.
And hair on the body.
यानी शरीर के ऊपर बाल है.
There's nails.
हमारे नाखून हैं.
Teeth.
दांत हैं.
Skin.
त्वचा है.
And so on.
और इस तरह से.
And then you go inside.
और फिर हम अंदर जाते हैं.
There's the tendons and bones.
स्नायु हैं, अस्थियां हैं.
There's the various internal organs.
और हमारे अंदर के बहुत सारे अलग-अलग जो अंग हैं.
It's the heart, the kidneys, and so on.
हमारा हृदय है और यकृत है और किडनी है.
And then in the body there's
मूत्राशय.
In the body there are all sorts of juices and fluids.
अरे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रस हैं.
There's the stomach bile.
और पेट के अंदर कितनी बातें हैं.
There's phlegm.
और लसीका है, लाला लाल है.
Blood, the sweat.
खून है और पसीना है.
And so on.
और इस तरह से.
So you look at your body and you just recognize that your body consists of all these different parts.
तो जब हम अपने शरीर के अंदर देखते हैं कि हमारा शरीर ये अलग-अलग हिस्सों से बना हुआ है.
So when you do that, when you think like that,
जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं,
what do you feel?
हम क्या अनुभव करेंगे?
Well, probably you feel two things.
हो सकता है कि हम दो बातें करेंगे.
The first probably is some disgust.
पहली बात तो हमें विविध से बोलते हैं आपको. हमें हिंदी में घृणा निर्माण होगी.
You know, if you go into a butcher shop and you see all the intestines there while the butcher is slaughtering.
जब हम किसी अन्य काटे की दुकान में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें जब काट के रखा हुआ बहुत सारी बातें आते हैं वगैरह बाहर रखी है.
You see the intestines, you see the stomach, you see the kidneys, you see the liver.
तो हम देखते हैं कि यकृत है और आते हैं वहाँ पर और हृदय है और ये सारी बातें वहाँ.
You see it's all slippery and slimy and bloody.
और वो बहुत ही यानी खून से भरा हुआ है, बहुत ही चिकना है.
And you want to vomit.
और हमें कैसे तो भी होने लगता है.
It's disgusting.
और घृणा उत्पन्न होती है.
Actually, you're carrying that around all the time.
और ये सारी चीजें जो है हम अपने साथ लेकर हमेशा घूमते रहते हैं.
And you're carefully washing it and looking after it.
और बहुत ही सजगता से हम इसे साफ करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं.
You know, somebody gave you a whole bag of pig's intestines, you wouldn't wash it and carefully stroke it and put nice clothes on it.
तो एक तरह इस तरह से ने कोई हमारी ये जो आते वगैरह है और सब बारे को साफ सुथरा किया फिर रख दिया.
You know, if you see the brains, they're really rather unpleasant.
अगर हम अपने मस्तिष्क को देखेंगे तो सुविधा की है.
But you spend a lot of time, if you've got hair, you spend a lot of time combing.
तो ये जो भेजे है ना, भेजे के ऊपर जो ये सर है ना, वो क्या आराम से बांध हुआ देख सकते.
Polishing your bald head if you've got one.
और ये जो सर के ऊपर के हिस्से को बहुत ही अच्छी साफ करते
हैं. But actually it's just a mass of brains underneath some bone.
तो ये जो हड्डियां हैं इसके अंदर जो है ये भेजा है मस्तिष्क है.
So if you reflect like this, your first feeling is one of disgust.
तो जब हम इस तरह से सोचते हैं तो पहले जो हमारी पहला जो अनुभव होता है वो घृणा का होता है.
Well, why do you want to do that? Why do you want that feeling?
तो हमें इस तरह की भावना क्यों होनी चाहिए?
Well, so that you are a bit detached.
तो यानी हम अनासक्त होते हैं.
So that you're less caught up with the body.
यानी हमारे शरीर में ऐसी कुछ बात नहीं जिसको हम पकड़ के रखते हैं.
It's just a bag of bones.
वो ये केवल यानी एक हड्डियों मांस हड्डियों का एक फैला है.
It's just meat inside skin.
यानी हमारी जो त्वचा है इसके अंदर सिर्फ मांस है.
That's what this body is.
और यह हमारा शरीर है.
It's very useful for practicing the dhamma.
यानी धर्म का आचरण करने के लिए बहुत फायदेमंद है.
But it has no value beyond that.
इसके बाद इसको कोई मूल्य नहीं है.
Nobody can eat it.
कोई उसे खा नहीं सकता है.
You can't do anything with it.
और इसके साथ हम और कुछ कर नहीं सकते.
It just has to be burned.
इसे सिर्फ जलाया जा सकता है.
At least a pig you can eat.
यानी ये जो सुअर होता है उसे कम से कम खा तो सकते हैं.
I'm not advocating cannibalism.
Hello, iski jahirat nahi kar raha hu.
Yes, but it makes you be more realistic about your body.
Yani humne apne sharir ke prati bahut hi vastavikta ko janna chahiye.
So that's the first effect that it has.
To iska pehla parinam hota hai isse.
But of course it applies to other people too.
Aur ise hum jab dusron ke sath ise dekhte hain to usse bhi aise hi hota hai.
She's so beautiful.
वो कितनी सुंदर है.
But she's just got slimy intestines, a bloody heart, and so on.
फिर वो इस तरह से बोलते आते और जो खूनी चिकना पानी इसे भरी हुई.
And that's just what you're hugging.
और इसे हम उसे यानी जोर से पकड़ते हैं, कस के पकड़ते हैं.
So this is what the text says. It's not Subhuti saying. This is what the text says.
ये सूत्र कहता है, सुबुद्धि नहीं कह रहे.
If you see a skeleton, you wouldn't come and hug it.
अगर आप यानी हड्डियों का अगर पंजा देखते हैं तो आप उसे जाकर लिपट नहीं सकते हैं.
But that's what you're doing.
और ये बात हम करते हैं.
So yes, it leads us to a more realistic attitude.
तो यह हमें एक बहुत ही यानी वास्तविक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है.
It leads us to recognize what really is there.
तो हम ये जानते हैं कि सचमुच वहाँ क्या है.
And it leads us, secondly, to recognize that the body is not a single thing.
और दूसरी बात इसमें ये देखते हैं कि यानी हमारा जो शरीर है वो कोई किसी एक चीज से नहीं बना है.
The body is made up of parts.
हमारा जो शरीर है वो अलग-अलग हिस्सों से बना है.
Just like everything is.
जैसे कि यानी ये सब कुछ है.
So we can't be attached to it, since it's made up of these parts that, in the end, will go apart.
यानी हम इसमें आसक्त नहीं हो सकते, ये इस तरह से अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है.
That's the first exercise.
यह पहला सराव है.
The second exercise is the one we're more familiar with.
और दूसरा जो सराव है ये थोड़ा सा इससे मिलता-जुलता है.
And that is, in this case, the four element practice.
और यहाँ पर चार धातुओं के बारे में बताया.
We do it in the form of the six elements.
और हम यानी छह धातुओं की साधना करते हैं.
But it comes to the same thing, and in a way, the six elements take us even further, deeper.
तो ये एक ही इसी तरह से हैं, थोड़ा सा छह धातुओं थोड़े और आगे गए.
They go beyond the body.
ये यानी शरीर के बाहर जाकर हम करते हैं.
So it's the Buddha says it's just as if a skilled butcher is cutting up a piece of a carcass of a cow.
तो यह जो खाटी होता है वो इस तरह से जो गैया होती है उसके उसे अलग-अलग टुकड़ों में बांट देता है.
Incidentally, it's very interesting. It's a cow. And this is one of the proofs that the cow worship of later Hinduism wasn't in ancient India.
तो इसे हम ये देख सकते हैं इस उदाहरण से कि यानी पुरातन भारत में यानी गैया की पूजा नहीं की जाती थी.
But we won't go further into that. It's just an interesting point.
यानी इसे हम आगे नहीं जाएंगे ये सिर्फ एक रोचक सी बात है.
It's quite an important construction of Hinduism. So yes, we divide it just like the cow. The butcher divides the cow.
So just तरह यह जो खाटी होता है गैया के अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है गैया को.
There's this part. There's that part.
तो यह हिस्सा यह वो हिस्सा.
So in the same way, we look at ourselves and we see that all these different parts belong to different elements.
तो यह इसी तरह से देखना है कि हमारे शरीर के जो अलग-अलग हिस्से हैं, वो अलग-अलग धातुओं से बने हैं।
We've got four elements here.
हमें यहाँ पर यानी चार धातु बताए गए हैं।
The earth element, which is solid things.
जो पृथ्वी धातु है, जो यानी घन पदार्थ है।
We've got the water element, which is liquid things.
फिर जल धातु है, जो जल धातु है। पतले पदार्थ हैं।
We've got the fire element, which is its temperature.
और फिर तेज धातु है जो तापमान को दर्शाता है।
And the air element, which is movement.
और वायु धातु है जो हलचल दर्शाती है।
So everything in our bodies can be put into one or other of these categories.
तो हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो सारे के सारे कि इसमें में से किसी ना किसी में आते हैं।
So when we look at our bodies, we see there's skin.
हम जब अपने शरीर को देखते हैं तो देखते हैं कि यह त्वचा है।
That's solid.
यह मजबूत है।
So it belongs to the earth element.
तो यह पृथ्वी धातु से संबंधित है।
It's the same as the earth element out there.
तो यह जो पृथ्वी धातु है ऐसे ही हमारे मेरे आजू-बाजू में भी है।
It comes from the earth element out there.
ये पृथ्वी धातु से यह आई हुई बात है।
One day it'll go back to the earth element out there.
एक दिन यह फिर से पृथ्वी धातु में चली जाएगी।
So this has three main consequences.
तो इसके यानी तीन मूल घटक हैं।
First of all, you realize there's nothing you can own in the body.
तो पहली बात है कि हमारे शरीर में अपना स्वयं पैसा कुछ भी नहीं है।
Because everything in your body comes from outside and goes back there.
हमारे शरीर में जो कुछ भी है बाहर से आता है और फिर चला जाता है।
It's as if you borrowed it.
एक तरह से हम इसे उधार लेते हैं।
So yes, you have an attitude, therefore, of detachment.
तो इसे हमारा यानी जो अनासक्ति का जो दृष्टिकोण है इसे हम बढ़ाते हैं।
Then you realize that it's part of the same thing. You realize that everything in the body is impermanent.
इसे यानी तो यही बात है कि यानी जो कुछ भी हमारे शरीर में है वो सभी अनित्य है।
You realize that in the end, the body is going to die.
हम अंततः ये जानते हैं कि ये जो शरीर है वह यानी चले जाने वाला है मरने वाला है।
And again, this reinforces your detachment, reinforces your sense that you are going to die.
यानी इसी यानी हम मरने वाले हैं इसलिए हमें अनासक्त होना ये बात हो सकती है।
And finally, this contemplation brings about a sense of anatta.
तो यह जो चिंतन है ये हमें एक तरह से यानी अनात्म जो बात है अनत्ता है इसे दिखाती है।
There's nothing fixed there.
कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो वहाँ पर ठोस है।
There's nothing in the body that is permanent.
तो शरीर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं जो नित्य है।
There's no self in the body.
कोई स्व नहीं है अंदर।
So you have an insight. You can have an insight into anatta or shunyata.
तो हमें यह यानी एक आत्म अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है कि अनत्ता है शून्यता।
So the six element practice is the main way we pursue this sort of contemplation.
तो हम जो छह धातुओं का ध्यान करते हैं तो यही इस प्रकार का चिंतन करते हैं।
We add on the extra two because they take you much more finely, much more deeply into anatta and anicca.
तो इसमें हमने दो चीजों को और शामिल किया है जो हमें और अनित्य और अनात्मा को गहराई में जाने के लिए सहायता
करती है. They take you deeply into shunyata.
ये हमें शून्यता की गहराई में ले जाती है.
But they're based upon contemplation of the body.
तो यह शरीर के प्रति का चिंतन करने का यह आधार है.
They don't work unless you reflect on the impermanence of the body.
यानी ये तब तक काम नहीं कर सकते जब तक हम अपने शरीर की जो अनित्यता है उसे नहीं चिंतन करते हैं.
So that's the second of the three exercises.
यह अने तीन जो सराव है उसमें से दूसरा देखा हमने.
And then thirdly, there's the contemplation of the decomposition of a corpse.
और तीसरा जो सराव है जो हमारे अने विघटन के बारे में है.
You don't see this so much in India now.
यानी अभी हम भारत में इसे ज्यादा नहीं देखते.
But in ancient India and even medieval India, not always were bodies burned.
यानी जो पुरातन भारत में और मध्ययुगीन भारत में भी यानी शरीर को पूरी तरह जलाया नहीं जाता था.
I think only quite wealthy people could afford to have their bodies burned.
बहुत ही यानी जिन जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको ये संभव होता था कि शरीर को जलाया जाए.
So people's bodies would just be taken to the death ground and left there.
तो अक्सर ऐसा होता था कि लोग शमशान में शरीर को ले जाते थे और उसे छोड़ देते थे.
And they of course would go through various stages in decomposition.
तो यह जो विघटन की जो अलग-अलग जो स्तर है वो होते थे वहाँ.
Immediately after death, the body just looks like a living body, but some sort of what can I say? Some sort of life has gone from it.
तो यानी शरीर अभी अभी मृत हुआ शरीर अगर हम देखते हैं तो वो यानी मृत शरीर नजर आता है उसमें जिंदापन नहीं है कोई.
But gradually the body begins to deteriorate.
तो आहिस्ता आहिस्ता जो शरीर है वह फूलने लगता है.
It begins to puff up as the gases are released.
यानी जो हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है वो तैयार होते हैं और निकलने के लिए तैयार होते हैं.
Gradually the skin begins to break up.
हमारी जो त्वचा होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फटने लगती है.
And after a little while it can look really quite disgusting, quite horrible.
और कुछ समय बाद हम वो बहुत ही विभत्स होती है और घृणादायक होती है.
Gradually the flesh either sort of turns to leather or it turns to water, turns to a liquid.
तो ये
it goes hard. Eventually you've got just a skeleton with bits of skin still sticking to it, bits of flesh still sticking to it.
फिर वहाँ पर सिर्फ मैंने हड्डियों का ढांचा है जहाँ पर कुछ कुछ जगह है मांस के कुछ टुकड़े अभी भी चिपके हुए हैं.
And then eventually even those bones begin to fall apart and you can't see the whole body.
और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो जो हड्डियों का ढांचा है वो भी बिखर जाता है इधर उधर जाता है और यहाँ शरीर देखना मुश्किल हो जाता है.
But after some years even those bones just crumble away.
और कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि जो हड्डियाँ होती है वो भी नष्ट हो जाती है.
So it used to be a common practice for bhikshus and yogis to go to the burial ground or the death ground and just sit and contemplate corpses.
तो उन दिनों यानी यह एक सराव हुआ करता था भिक्षुओं के लिए और योगियों के लिए कि शमशान में चले जाए और ये जो कुछ हो रहा है उसका चिंतन करें.
It's very strong medicine indeed.
और ये बहुत ही जोरदार ऐसी दवा है, कड़वी दवा है.
In India, at least you are sort of accustomed to looking at dead bodies.
तो भारत में एक तरह से ऐसी यानी प्रचलित ये बात है कि यानी मृत शरीर की तरफ देखना.
In Britain, everybody wants to get the body into a box as quickly as possible.
यानी ब्रिटेन में ऐसा है कि यानी मृत्यु के बाद जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी उसे वो बॉक्स में डाला जाए.
So they don't have to see it.
तो यानी वो ना दिखे ताकि.
But here you see the body, you see it being burned.
यानी हम यहाँ हम यानी शरीर के मृत शरीर को ऐसा देखते हैं जब तक जलाया नहीं जाता.
So one needs to use that as well as a source of contemplation.
तो यह एक ऐसा चिंतन का अच्छा विषय है.
Really the whole point of this exercise, well, the two points to it.
यहाँ दो मुद्दे हैं.
First of all, it reinforces that sense of the repulsive nature of the body.
यानी हमारे शरीर का जो स्वभाव है इसके बारे में ये बात है.
It's just by for a little while that you can maintain your body's beauty.
यानी हम अपने शरीर की सुंदरता बनाए के लिए बनाने के लिए कुछ करते हैं.
If you're fortunate enough to have it. If you're fortunate enough to have any body, beautiful body.
अगर हम अगर इतने क्या बोलते भाग्यशाली हैं कि सुंदर शरीर वाले.
But you can't keep it for very long.
लेकिन इसे हम लंबे समय के लिए ऐसा नहीं कर सकते.
Even as you get older, your body becomes less and less attractive.
जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं तो हमारी शरीर की जो सुंदरता है वो आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है.
It doesn't take long.
हम इसे लंबे समय के लिए नहीं रख सकते.
It's amazing how quickly your hair falls out.
कुछ लोगों के बाल यानी जल्दी झड़ जाते हैं.
The wrinkles come.
यानी यहाँ पर झुर्रियाँ आती है.
The belly goes out.
हमारा पेट जो है वो बाहर निकल आता है.
The limbs become weak and slender.
यानी हमारे हाथ जो है बहुत यानी उसमें कोई ताकत नहीं रहती है, ऐसे ही लटके हुए रहते हैं.
That happens to all of us.
और ये हमारे सभी के साथ होता है.
So yes, we need to recognize the body is just a vehicle.
हमने ये पहचानना चाहिए कि ये जो शरीर है हमारा ये केवल एक वाहन मात्र है.
Seven.
If we didn't have a body, we wouldn't be able to meditate.
अगर हमारे पास शरीर नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं कर सकेंगे.
But it's not anything wonderful in itself.
और इसके अंदर ऐसी कोई सुंदर बात नहीं है.
It's just a vehicle for the dhamma.
ये केवल धम्म का आचरण करने के लिए एक साधन है.
So when we see the body going through these phases of dissolution, we see, well, we're going to be like that.
तो इस तरह मेरे शरीर की ये जो क्रिया है इसे देखेंगे तो हमें लगता है कि मैं भी ऐसा रहूंगा.
This body that we cherish, it's just going to be like that.
इस शरीर को इतनी देखभाल कर रहा हूँ ये ऐसे ही होगा.
There's nothing to be attached to.
इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके साथ असत हुआ जाए.
We don't have to go around with a sense of constant disgust. It's not that every time you look in the mirror you think, ugh.
ये ऐसा नहीं है कि हम आईने में देखकर घृणा उत्पन्न हो जाए अपने स्वयं को.
But you have a realistic attitude to what the body is and what's going to happen to it.
तो हमारा यानी वास्तविक दृष्टिकोण होना चाहिए अपने शरीर के प्रति कि ये क्या है और इसके साथ क्या होने वाला है.
And then yes, the inevitability of death.
और मृत्यु है.
Inevitable. It's definitely going to come.
और ये जो मृत्यु है वो यानी आने ही वाला है.
There's no escaping.
यानी कोई भी यानी इसे बचने वाला नहीं है.
You cannot hide from death.
हम अपने आप को मौत से नहीं बचा सकते हैं.
Death will find you wherever you are.
हम जहां कहीं भी छुपे रहेंगे हमें मृत्यु वहां ढूंढता हुआ आएगा.
So you need to face up to death.
तो हमें मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा.
And if you face up to the fact that you're going to die, you can use your life well.
यानी मृत्यु का सामना हमें करना है जब हमारे ध्यान में आएगा तो हम अच्छा जीवन बिताएंगे.
That's what we need to do whenever we see the death of dear friends.
यही बात हमने देखा है कि हमारे जो जो अच्छे दोस्त थे प्यारे दोस्त थे वो जाने के बाद.
We need to think, well, what about me?
हमने ये सोचा है कि यानी मेरे बारे में क्या?
How long have I got?
कितना समय मुझे मिलेगा?
When am I going to die?
मैं कब मृत्यु होगा?
I don't know.
मुझे पता नहीं.
I must use this time well.
ये जो समय मुझे मिला है इसका मैंने अच्छा उपयोग करना चाहिए.
So this helps us to prepare ourselves for death.
तो ये हमें यानी मृत्यु के लिए मृत्यु के सामना करने के लिए ये बात हमें सहायता करती है.
It helps us to live life well.
ये हमें सहायता करती है कि हमने अच्छा जीवन कैसे बिताना चाहिए.
And then we can use our life, use our body for the sake of the Dhamma.
तो हम अपने शरीर का और हमारे जीवन का धम्म की सहायता के लिए उपयोग करते हैं.
So our mindfulness of the body becomes a mindfulness of the reality of the body.
हम शरीर के प्रति जब जागृत हो जाते हैं तो शरीर की जो वास्तविकता है उसके प्रति जागृत होते हैं.
We recognize what the body really is.
हम ये जानते हैं कि शरीर वास्तव में क्या है.
And therefore we live life in an effective way.
तो इससे फिर हमारा हम अपना जो जीवन है वो बहुत ही परिणामकारकता से जीते.
And if we go far enough, we're released from all attachment.
और हम अगर पर्याप्त मात्रा में आगे चले गए तो हम अनासक्त हो सकते हैं.
And yes, we reach nirvana just through contemplation of the body.
हमारे शरीर का चिंतन करके ही हम निर्वाण तक पहुंच सकते हैं.
In TBMSG, we practice this element of the kaya upasana through the 6-element practice.
हम अपने TBMSG में काया उपासना की जो बात करते हैं या छह धातुओं का ध्यान करके करते हैं.
And we will be doing that during the remainder of this retreat.
हमारे आने ये जो शिविर के दौरान हम यह करने वाले
हैं। We need to apply it all the time.
और लेकिन इसका हमने बार-बार इसका आचरण करना चाहिए।
And then we will really be following the Buddha's message.
और बुद्ध का यह जो संदेश है इसे हम तभी सचमुच में आचरण कर पाएंगे।
And we'll really see that the mindfulness of the body is our best friend.
और इसीलिए कहा गया है कि शरीर के प्रति जागरूक होना यह सर्वोत्तम मित्र है।
And a source of constant joy.
और यह नित्य स्वरूप का आनंद का स्रोत है।